یہاں حضرت نوح کا تذکرہ ہے کیونکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, پھر ہمیں پکارا نوح نے اور ہم کتنا اچھا قبول کرنے والے جواب دینے والے ہیں, اور ہم نے ان کو بھی نجات دی اور ان کے اہل کو بھی ایک کرب عظیم سے, پھر ہم نے ان کی اولادوں کو باقی رہنے والوں میں کر دیا اور ہم نے ان کو باقیوں میں چھوڑ دیا, یعنی مراد یہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, مراد یہ کہ حضرت نوح کی نسل چلتی گئی. سلام علی نوح فی العالمین, یہاں اس رکوع میں اور بلکہ اس سورت میں دیکھیں گے جو سلام علی نوح اور آگے باقی انبیاء کے ساتھ بھی آئے گا نا, اسی لیے پھر انبیاء کرام کو ہم کہتے ہیں علیہ السلام. یہ بھی ایک پورا دینی ریچول ہے نا کہ نبی کے نام کے ساتھ علیہ السلام آئے گا, صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ آئے گا, تو اس کو بدلنا نہیں چاہیے. تو بہرحال اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہیں, انہ من عبادنا المومنین, وہ تمہارے مومن بندوں میں سے تھا, پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو, وہ بے شک وہ ابراہیم کے گروہ میں سے تھے. کون؟ اس جا ربہ بقلب سلیم, جب وہ آئے ہمارے پاس قلب سلیم کے ساتھ, یا جب وہ آئے گا ہمارے پاس قلب سلیم کے ساتھ, جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو, کیا تم خود ہی کھڑ لیتے ہو, باندھ لیتے ہو اپنے الہوں کو اللہ کو چھوڑ کر, جو چاہتے ہو وہ کرتے ہو, تو تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے؟ یہاں لفظ دیکھیے گا قلب سلیم. قلب سلیم کی صفات کیا ہیں؟ یہ کون سا دل ہوتا ہے؟ پہلی بات ہے مخلوق کا خیر خواہ, بخا کی کیفیت. خیر خواہی ہر مسلمان کا حق ہے اور خیر خواہی امانت ہے. جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے نا, تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے بندوں کی محبت نہ آئے. تو قلب سلیم تڑپنے والے دل کو کہتے ہیں. لفظ سلیم سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو بھی کہتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر کسی کو سانپ ڈس لے تو وہ بندہ تڑپتا ہے. تو تڑپنے والا دل بے حس دل نہیں ہے, دل مرتدل نہیں, اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرد کوہن کا چارہ. آج ہم بے حس ہو گئے, ہم کہتے ہیں کون برا بنے, کیوں کسی کو میں کہوں, میں کیوں تعلقات خراب کروں, سب کو پتہ ہے ان کے بھی گھروں میں قرآن ہے. نہیں, دیکھیے ماں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ بچہ مین ہول کی طرف جا رہا ہے, تو بیٹھی رہے گی؟ اس کو نہیں دکھ رہا, اس کو نہیں پتہ. بچہ سمندر کی موجوں کے قریب ہو رہا ہے تو ماں آرام سے بیٹھے گی؟ تو قلب سلیم وہ ہے جو لوگوں میں برائیاں اور غلط چیزیں دیکھے تو تڑپ اٹھے, بے حس دل نہیں ہوتا. آج دن بدن ایسے دل بنائے جا رہے ہیں انسانوں کے کہ وہ روبوٹ لگ رہے ہیں. سگے بھائی بہن ایک دوسرے کو نہیں کسی اچھی بری بات پہ روک ٹوک سکتے. تو حدیث سن لیجئے, ابن ماجہ کی 1433 ہے, حضرت علی اس کے راوی ہیں. دستور کے مطابق مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں, جب اس سے ملے تو سلام کہے, جب وہ اسے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے, جب اسے چھینک آئے تو اسے دعا دے, یرحمک اللہ کی صورت میں کہ دعا دی جاتی ہے, جب بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے, جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے, اور 6ٹی بات, اس کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ کو اپنے لیے جنت پسند ہے, دوسروں کے لیے جنت پسند کیجئے. آپ اپنے لیے قرآن کا کوئی خاص ورژن پسند کرتے ہیں جس سے آپ کا دل کھل جاتا ہے, آپ دوسروں کو بھی اس سے جوڑ دیجئے. تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کے لیے تڑپنے والا اور ان کے لیے کچھ کرنے والا بنا دے. آگے ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ ہے جس میں بت ٹوٹتے ہوئے دکھیں گے. تو آیت 88 سے 98, حق گوئی اور بت شکنی, شیوا ابراہیمی, یعنی سچ بولنا پیش کر دو چاہے لوگ مائنڈ کریں, اور بت جو نہیں اگر وہ ہٹا رہے تو ان کو توڑنا, یہ ابراہیم کا شیوا ہے. فنظر نظرتن فی النجوم, پھر انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر ڈالی, پھر کہا بے شک میں تو بیمار ہوں, پھر وہ ان سے منہ پھیر کر یا پیٹ پھیر کر چلے گئے. جب قوم ساری اپنی کسی پوجا پاٹ کے لیے چلی گئی اور ابراہیم نہ گئے, اب کیا وہ ان کے مندر میں آ گئے. فراغ الی آلہتہم, پھر فارغ ہو گئے یعنی چل پڑے ان کے معبودوں کی طرف, پھر جا کر وہاں جو بات ہوئی وہ یہاں سکھائی جا رہی ہے. فقال لا تاکلون, کھانا رکھا ان کے بتوں کے آگے, کہا کھاؤ, پھر کھاتے کیوں نہیں ہو, مالکم لا تنتقون, بولتے کیوں نہیں ہو. پھر اپنے دائیں ہاتھ میں ایک کلہاڑا لیا اور ان کو مارنا شروع کر دیا کہ شاید ان میں سے کوئی آ کر دفاع کر لے. और फिर उसके बाद कौम जब वापस आई तो जो बहस और झगड़ा हुआ और एंड पे उन्होंने क्या किया, फराद बिही कैदन, उन्होंने तो इब्राहिम के साथ एक बुरा इरादा किया। पीछे हम पढ़ आए हैं सूरत अल-अंबिया में आग जलाई, और हमने क्या किया, फजालना हुमुल असफलीन, हमने उन्हीं को निचलों में से नीचा कर दिया, यानी वकुलना या नारुकुनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, यानी लोगों की जलाई हुई आग को अल्लाह ने ठंडा कर दिया। ये किस बात का बदला था, हक गोई और बुत शिकनी का। अब इस वाक़े को सुनकर कुछ लोग बड़ी जल्दी से कमेंट दे देते हैं, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये अच्छा है बुरा। तो याद रखे, ये पहले दिन नहीं किया। अम्बिया कराम पहले दिन आके रिएक्शन नहीं शो करते। आप किसी के घर के जाकर उसकी तस्वीरें उतार के फेंक दें, आप जाकर बुत तोड़ने शुरू करें, आप उनके स्टैचूज को गिरा दें, नहीं, पूरी तबलीग के बाद हुआ। अल्लाह के नबी ने 13 साल मक्की दौर में सब्र किया। खाना काबा में बुत थे, 360 बुत थे, रिवायत में आता है, हर कबीले का बुत था, कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद मदीना चले गए, सुलह हुदैबिया के मौके पे पलटा दिए गए। अगले साल सन 7 हिजरी में सहाबा कराम के साथ आपने उमरा किया और मक्का वाले तो पहाड़ों पे चले गए, खाली था शहर, सब बुत तोड़ सकते थे, आप नहीं तोड़ा। अगले साल 8 हिजरी मक्का फतह हुआ, जब इस्लाम की डोमिनेंसी हुई, तो अब तो आपकी कंस्टडी में है मक्का, तो आप तो गलत चीज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो आप कह लें कि 21 साल के बाद अल्लाह के नबी ने फिर अपने हाथ से बुत तोड़े और अपने सहाबा से भी तोड़वाए। तो ये सारी हिकमतें हैं, अल्लाह ताला हमें हिकमत के साथ दीन को आगे ले जाने वाला बनाए। आगे हज़रत इस्माईल का किस्सा है, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी, 99 से 102, यानी किस स्कूल के पढ़े हुए थे इब्राहिम इस्माईल, किस स्कूल के पढ़े हुए थे इस्माईल, कौन सी ब्रांडेड चेन में जाते थे, कौन थे उनके उस्ताद, ये समझ लीजिए इसी पे है ना, कि सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी, ये मकतब की करामत थी। आज हम आला आला स्कूलों में और बड़ी बड़ी फीसें देकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इतने फरमाबरदार बच्चे किसी के ही होंगे, और जिनके हैं अल्लाह उनको नसीब करे, और जिनके नहीं उनके बना दे। वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, जब कौम ने आग जलाई उसमें डाल दिया और अल्लाह ने बचा लिया, तो इब्राहिम का दिल खट्टा हो गया। ये था वो वक्त जब नबी फिर हिजरत करते हैं, हिजरत कर दी का, बस मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं किधर जाऊँगा, जिधर मेरा रब मुझे ले जाए मैं जाऊँगा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह के रास्ते की हिजरतें और ज़ुबान पे दुआएं, अल्लाह क्यों ना सुने, बुढ़ापा है, अल्लाह मुझे नेकों में से दे दे। अच्छा, फबशरनाहु बिग़ुलाम हलीम, फिर हमने उनको खुशखबरी सुना दी एक बड़े हलीम बेटे की। क्या पता चला कि अल्लाह के रास्ते के काम करते जाएं और दुआएं मांगते जाएं और मायूस ना हो। आज भी जो लोग औलाद की नेमतों से महरूम है, अल्लाह उनको औलाद दे, सवाले अता फरमाए, और जो दुनिया की जिस नेमत से महरूम है अल्लाह उनको अता कर दे। बच्चा भी हो गया, फलम्मा बलग अम्मा उसाया, जब दौड़ धूप की उम्र को वो बच्चा पहुंच गया, काला या बुनैया, कहने लगे ऐ बेटे, इन्नी आरा फिल मनाम, एक एक लफ्ज़ है, आप इसमें से वो इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा वाली सीरी सुने, इन आयात को हमने बहुत ही यूनिक तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह समझा है, उसमें एक एक लफ्ज़ में बीसियों बातें हैं। लेकिन इस वक्त तो बस इतना कह लीजिए कि बाप इब्राहिम हो तो बेटा इस्माईल होता है, बाप खलीलुल्लाह है तो बेटा इतना बादब है कि बाप के ख्वाब के ऊपर भी कह रहा है कि या बते फलमा तू उमर, बाप ये नहीं कह रहा मैं ऐसा करूं, ख्वाब है बस। आज के तो माँ बाप बेचारे अपने ख्वाब भी नहीं बच्चों को सुना सकते क्योंकि वक्त ही नहीं है। अन्नी अज़बहू का, मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, आप बताइए बेटा आपकी क्या राय है। पता चला औलाद को मशवरों में शामिल करना चाहिए, एकदम जाकर धाड़ साड़ करके उनके ऊपर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो बाप ने जब कहा तो बेटे ने कहा इत्तेफल मा तू उमर, अब्बा जी आप कर दीजिए जो आपको हुक्म दिया है। हालांकि अब देखिए तू उमर का लफ्ज़ अमर है, हालांकि बाप ने तो ख्वाब देखा था, अल्लाह ने ये तो नहीं कहा था इब्राहिम को कि जाओ और अपने बेटे को ज़िबा कर दो। लिखिए कि जिनके दिल अल्लाह से जुड़े होते हैं ना, वो ख्वाब की बात को, इशारे को भी हुक्म समझते हैं, और अल्लाह माफ़ करे जिनको यकीन नहीं होता ना, तो वो कहते हैं किधर लिखा है जी, हराम का लफ्ज़ दिखाइए जी, नहीं नहीं ऐसे नहीं जी, वो जी, ना ना ना, ते फल मा तो मर, ईमान वाला अल्लाह के इशारे को चाहे वो ख्वाब में मिल जाए हुक्म समझता है। और बेटे ने अपना भी ईमान दिखाया, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन, अन करीब आप मुझे साबिरों में पाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा। अब यहाँ देखिए कि हिदायत की कुछ बातें हैं। ऐसा बेटा कब मिलता है? जब बंदे को अल्लाह की तरफ से नेमत मिलती है, और नेमतों में नेमत है हिदायत की। हिदायत की कुछ बातें नोट कीजिएगा। एक होती है हिदायत किताबी, किताबों से आप हिदायत ले लेते हैं, और इसमें बेहतरीन सोर्स कुरान और सुन्नत है। लेकिन एक दूसरी हिदायत है, हिदायत की एक दूसरी किस्म जिसको हिदायत बयानी कहते हैं। बयानी ये मुख्तलिफ वाकयात, हादसात और तजुर्बात से हासिल होती है। यहाँ ये किस्सा है इस्माईल और इब्राहिम, हिदायत बयानी है। आज भी जब हम इसको पढ़ते सुनते हैं ना, तो एक दफ़ा तो अपने अंदर झांक के बंदा देखता है कि मैं किधर खड़ा हूँ। क्या आज ऐसा ही कोई ख्वाब किसी बाप को आ जाए तो बुरा करेगा? आ नहीं सकता। ये याद रखिए, अंबिया के ख्वाब हुज्जत होते हैं। आज अगर किसी को ये ख्वाब आ भी जाए तो वो अमल नहीं करेगा, उस पर कत्ल का केस होगा। लेकिन हमें इसमें से क्या देखना है कि हम ईमान के किस दर्जे पे हैं, और अगर ईमान नहीं है तो फिर कुरान को देखना होगा। अब देखिए, ये कुरान जो ना, ये बहुत बबरकत किताब है। इसकी आयात में भलाई भी है, और ये रहनुमाई करने वाली आयतें हैं, शर और फसाद से फेरने वाली हैं, दुनिया और आखिरत में खैर और भलाई का जरिया है। तो इस किताब से ताल्लुक़ आहिस्ता आहिस्ता हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। फिर आगे तारीख़ इंसानी की अजीम तरीन क़ुरबानी का तذکرہ है, आयत 103 से 111 में, कि जो किसी ने कहा कि आसमान भी थर्रा गया होगा। फलम्मा असलमा, जब दोनों मुसलमान हो गए, मती हो गए, सरेंडर कर दिया, सबमिट कर दिया, कौन? बाप और बेटा। बाप काटने के लिए और बेटा कटने के लिए। वतल्लहु लिल जबीन, फिर उसने उसको लिटा दिया जबीन के बल, यानी मुंह नीचे कर दिया कि कहीं बेटे की शक्ल देखकर छुरी हाथ से हिल ना जाए। वना दईना हुआ या इब्राहिम, फिर हमने पुकारा उसको, ए इब्राहिम कद सद्दकत रुया, आपने तो सच कर दिया अपना ख्वाब, और हम बेशक किसी तरह जजा देते हैं मुहसिनीन को। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, इसमें कोई शक नहीं है कि यह आजमाइश बहुत बड़ी थी। और जिसको रब्बे अजीम बलाउन मुबीन कहे, बताइए वो कितनी बड़ी होगी? अब देखिए ना, बच्चे और बड़े की बात में फ़र्क होता है। बच्चा कोई कहता है बाहर बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी है, तो हो सकता है कि वो सुजुकी वैन से भी छोटी हो, लेकिन बच्चे को बड़ी लगती है। और एक बड़ा बंदा आकर के, बाहर बहुत बड़ी खड़ी है गाड़ी, तो वो कितनी को बड़ी होगी? अल्लाह जिस आजमाइश को बड़ी कहे, वो छोटी कैसे होगी? फदई ना हो बिज़िबहिन अली अजीम, हमने उसकी जगह एक और फिदिये में दे दी, यानी कुर्बानी का बकरा आ गया, और हमने इब्राहिम की सुन्नत को पिछलों में बाकी रखा। सलामती हो इब्राहिम पे, और हम इसी तरह जजा देते हैं मुहसिनीन को, और वो हमारे मोमिन बंदों में से था। तो क्या पता चला, इस दर्जे का सरेंडर करना हो तो फिर अल्लाह क्यों ना उनको कहे कि वत्तखज़ल्लाह इब्राहिम हनीफा। और हज़रत इस्माइल जैसी औलादें अल्लाह ताला उन्हीं को देता है जिनके अंदर कोई गुण है, और अल्लाह ताला बिगड़ी हुई औलादों और बिगड़े हुए वालदैन को हिदायत दे दे। आगे अहमियत नसब की नहीं, किरदार की है। 112 से 113 में ये मैसेज है, यानी हज़रत इब्राहिम और इस्माइल के तذکروں के बाद अब आगे इसहाक़ अलैहिस्सलाम और फिर उनकी नस्लों की बात करके बता दिया कि कुछ उनकी औलादों में कौन है। वमिन ज़ुर्रियतिहिमा मुहसिनुन वज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीन, अम्बिया कराम की नस्लों में से भी फिर बाज़ दफ़ा नफ्स पे जुल्म करने वाले लोग निकल आए, क्योंकि किसी को उसका नसब नहीं बचाएगा, उसका किरदार बचाएगा। आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून पर इनायात रब्बानी का तذکرہ है, आयत 114 से 122 में, वलकद मनन्ना अला मूसा व हारून। और आप इसको नोट करिएगा, थोड़ा थोड़ा वक्त गुजरता है ना, तो अम्बिया के नाम के किस्से आ जाते हैं। बस लोग इससे बड़े इरीटेट होते हैं, ये क्यों है, एक ही दफ़ा हूँ। देखिए, एक ही दफ़ा तो नहीं खाना खाते आप क्यों हर 5-7 घंटों के बाद खाते हैं? एनर्जी, ताकत और ज़रूरत। ये अम्बिया के किस्से ना आपका मेरा एनर्जी ड्रिंक है। कभी बंदा एक किस्म के हालात में होता है, कभी उसको दीन की वजह से एक आजमाइश पड़ी है, कभी लोग कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ। तो अम्बिया के किस्सों से और कुछ भी ना हो ना, तो अपने ईमान को चेक करने का ग्राफ है। आप वजन क्यों चेक करते हैं बार बार? वेट गेन तो नहीं किया, वेट लूज तो नहीं हो गया? तो अम्बिया कराम के किस्सों से अपने ईमान का वेट चेक करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल यहाँ हज़रत मूसा और हारून के तذکرے के बाद आगे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक है, आयत 123 से 132 में, और इनका जिक्र बहुत कम होता है। इनके दौर में एक बुत को पूजते थे जिसका नाम बाल था, इसीलिए आ रहा था दूना बालन, बाल नाम का बुत था। और अख्सनुल खालिकीन को छोड़ देते हो। यहाँ आप देखिए कि इस नबी ने भी तौहीद की बात की और इनके भी नाम के साथ इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन आ रहा। चुने हुए लोग हैं जिनके अल्लाह ताला यहाँ तज़किरे फरमाते हैं। आगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के एहसान है, 133 से 138 में। और हज़रत लूत का जहाँ भी तस्कर आता है तो दो बातें ज़रूर ज़हन में रखिएगा, एक तो इनकी कौम नफ्स परस्त हुई, दूसरा इनकी बीवी भी इस मिशन में साथ नहीं थी, अल्लाह ने उनको पीछे कर दिया। यानी जिसके अमल ने उसको पीछे छोड़ा उसका नसब उसको आगे नहीं लेकर आएगा, यहाँ ये पैगाम मिलता है। फिर आगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए बख्शिश और करम की बात है, 139 से 148 में। वइन्ना यूनुसा लमिनल मुरसलीन, यानी एक एल्बम है ये जो आपके मेरे सामने खुला हुआ है, क्या आप ज़रा यूनुस को भी देख लो, कैसे वो एक भरी हुई कश्ती में गया और फिर वहाँ कुरानदाजी हुई, फिर मछली ने उनको लुकमा बना लिया और वो बड़े बुरे हाल में थे। और अगर वो तस्बीह करने वाले ना होते तो वो तो मछली के पेट में रहते कब तक? इला यौमी युबअसून। क्या पता चला कि आयत करीमा जो हम पीछे सूरत अल अम्बिया में पढ़ाए, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, अगर हज़रत यूनुस वो कलेमात अदा ना करते तो क़्यामत तक मछली के पेट में रहते, यानी मछली उनकी कब्र बन जाती। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह कहते हैं हमने उनको फिर बाहर चटियल जगह पे डाल दिया, वो बड़े बीमार थे, फिर हमने कोई एक वहाँ कद्दू की बेल उगा दी, फिर उनको वापस भेजा कौम की तरफ। तो 1 लाख से कुछ ऊपर लोग जिनकी तरफ इनको भेजा था फिर वो ईमान ले आए। अब देखिए कि आज 1.25 लाख पढ़ते हैं ना, शायद इस लफ्ज़ से दलील लेते हैं, हमने कुरान से यही लिया, अल्लाह हमारी हिदायत कर दे। आगे देखिए मुशरिकीन ने मक्का का झूठा अकीदा, आयत 149 से 157 में। नबी सल्लम के साथ जो उनका मामला था, बहस मुबाहसे का, उसका तذکرہ है। कभी कहते थे फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम खुद तो बेटी के नाम से बिदकते हो और मेरी बेटियां बनाते हो, मुझे ना बेटों की ज़रूरत है ना बेटियों की ज़रूरत है, और जो बात कर रहे हो उसकी दलील ले आओ। कुछ और थे वो कहते थे जिन्नात के साथ अल्लाह का नाउज़ बिल्ला नसब है, तो उसका तذکرہ अगली आयत में है, आयत 158 से 163। जिन्नात का अल्लाह ताला के साथ कोई रिश्ता नहीं सिवाय खालिक और मखलूक, आबिद और माबूद के है, यानी कोई ऐसा ताल्लुक जिसको तुम इंसानी ताल्लुक के लेवल पे लेते हो वो उनसे नहीं है। एक मखलूक के तذکرے के बाद अगली मखलूक फरिश्ते। तो फरिश्तों का असल मुकाम 164 से 166 में बताया जा रहा है, वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुम मालूम। हर फरिश्ते का एक अपना काम है, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, यानी फरिश्तों को अल्लाह ताला ने ड्यूटीज़ असाइन की हुई हैं। और वो सब कौन है? वइन्ना लनहनु सॉफून, वो सफ़े बांध के काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। इससे पता चलता है कि लोगों को अपनी ड्यूटियाँ भी पता होनी चाहिए और उनको अपना अपना काम आसन दर्जे से बेहतरीन तरीके से करना चाहिए ताकि वो एवर लास्टिंग हो और वो काम आगे से आगे फिर बढ़ सके। फिर आगे मुशरिकीन ने मक्का के लिए वईद है, 167 से 170 में। वइन कानू लयकूलून लौ अन्ना इंदना ज़िक्र मिनल अव्वलीन लकुन्ना इबादल्लाहिल मुखलसीन। ये जुमला नोट कीजिए, बहुत सारे लोग ये जुमला बोलते हैं, सच्ची अगर हमें कोई कहता कोई बताता ना तो हम बड़े ही खालिस हो जाते, और जब वो मौका आता है तो वही किया जो मक्का वालों ने अल्लाह के नबी के साथ किया। तो हमेशा ऐसी आयतों को पढ़ते वक्त अपना मुहासबा करना चाहिए कि क्या जब कोई नेमत मिलती है तो मैं उसकी कदरदानी करती हूँ या उसकी नाशुक्री करती हूँ। फिर उसके बाद मोमिन के लिए अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी, ये बात है 171 से 179 में, जिसमें अल्लाह ताला ने क्या बता दिया, वलकद सबकत कलिमतुना ली बादिन अल मुरसलीन, ये बात साबित हो गई, यानी अप्रूव्ड है। ये बात एक बार फिर पता चल गई क्या कि जो हमारे भेजे हुए थे, इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, नसरा से यंसरा, नसरा नुसरत उर्दू में भी हम बोलते हैं, यानी हमारे भेजे हुए ज़रूर मदद किए जाएंगे। ये वो ग्रुप, वो ग्रोह हैं जो गालिब भी आएंगे। बस आप अब इनकी बातों पे परेशान ना हों, बल्कि आप क्या करें, इनको छोड़ दें इनके हाल में। इनके ऊपर एक जब अजाब आने वाला है, जब आएगा, तो फिर इनको लग पता जाएगा कि हम ने क्या गलत काम किए। इसके बाद आगे ज़रा देखिए तो 180 से 182 में जो आखिरी आयात बनती हैं सूरत की, इसमें कफ़ारे मजलिस की दुआ आती है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि कोई किसी भी जगह से जब उठे तो ये जुमले बोल दे, बल्कि आपका अपना अमल भी था कि सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको मांगा करें। मजलिस में, महफिलों में बहुत सारी कमी बेशियाँ हो जाती हैं, तो अल्लाह ताला कफ़ारे बनाएगा। और यहाँ आपने पूरी आयत सूरह फातिहा अली नोट की, काउंट करते जाइए कि कुरान में ये कहाँ कहाँ और कितनी बार आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पे सूरत पूरी हुई।